शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देखो बाप कितनी बड़ी सैक्रीन है, बाप जैसी बड़ी सैक्रीन कोई भी हो नहीं सकती, विश्व की बादशाही देते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप करनी घोर भी है, तुम बच्चे बाप को क्या देते हो, देते हो कखपन, और बाबा उसके रिटर्न में कितना देते हैं। बाबा ने कहा यहाँ थोड़ा सा देते हो और बाबा कितना बड़ा ब्याज भी देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि हीरे जैसा कौन है और सोने जैसा कौन है, कौन बताएगा। इस संगम युग में हम हीरे जैसा बनते हैं, लेकिन भविष्य में हीरे जैसा कौन है और सोने जैसा कौन है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, जो विश्व महाराजन बनते, महाराजा महारानी बनते, वो हैं हीरे जैसा, और बाकी जो प्रजा है वो सोने जैसी है, क्योंकि हर प्रकार का सुख है, कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। वो बाबा ने बताया, बाबा तो चाहते हैं कि सब हीरे जैसा बने। संगम युग पर तो बाबा सबको हीरे जैसा बनाते ही हैं, लेकिन भविष्य स्टेटस में क्या क्या अंतर हो जाता है वो बाबा ने बताया। फिर बाबा ने एक बहुत राजयुक्त इतनी गहरी पॉइंट बताई है, ये हर एक के लिए बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा कि पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना। कई बार होते ना ऐसे ऐसे लोगों को पैसा दे देते हैं, कोई गरीब आता है वो ऐसे एक्शन करता है, उसको दे देते हैं, वो जाकर के शराब पीता है, सिगरेट पीता है, गलत काम करता है। तो बाबा कहते गलत काम करते हैं तो उसका भी हिसाब किताब जुड़ जाता है। इसलिए बच्चों को ध्यान रखना है, अभी तो हमको अपने पापों को भस्म करना है, पापों को बढ़ाना नहीं है, तो ये हिसाब किताब के लेन देन को भी समाप्त करना है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 11 जनवरी 2025, मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे योग अग्नि के समान है, जिससे तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में योग में रहो। मीठे बच्चे योग अग्नि के समान है, जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा पावन बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में योग में रहो। आज का प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है। बाबा के बने पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस एक बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है। इसका उत्तर है, पैसा दान किसे देना है, इस बात पर बहुत ध्यान रखना है। होते हैं ना, कोई कहाँ दान कर देते हैं, कोई कहाँ दान कर देते हैं, तो बाबा कहते हैं इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर के शराब आदि पिया, बुरे कर्म किया, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करना है, यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना। कई बार ऐसे देखते हैं ना, कारोबार बिजनेस में कोई ना कोई व्यक्ति को पैसा दे देते हैं, वो कहेगा थोड़े टाइम में रिटर्न कर दूंगा, वो जाकर उस पैसे से कुछ ना कुछ गलत काम, कोई ऐसा बिजनेस शुरू करता है गलत काम का, तो वो भी बहुत बड़ा पाप चढ़ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चों को इस बात का बहुत ध्यान देना है कि पैसे का लेन देन कभी भी औरों से नहीं करो, जो मिला है उसमें ही खुश रहना है, उसी को यूज करना है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। आज का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति, इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना ही याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे पाप जल जाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया में कोई नहीं कहेगा योग अग्नि है इससे पाप खत्म होंगे। बाबा कहते ये केवल तुम बच्चे ही जानते, इसे तुम बच्चे ही जानते हो। कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं? सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ है पाप आत्मा। कहां भी जाता है ये बहुत पुण्य आत्मा है और ये पाप आत्मा है। दुनिया में भी कहते हैं ना, कोई अच्छा काम करता है तो कहते हैं पुण्य आत्मा है, कोई गलत करता है तो कहते हैं पाप आत्मा है। इसलिए बाबा कहते हैं कहां भी जाता है ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। कर्म नीचे उतरते जाते हैं फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। पतित पावन बाप को भी इसलिए याद करते हैं कि आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया ये किसको भी पता नहीं है, कैसे पतित बने, किसने बनाया, बाबा की ये भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्मा है इसलिए इसको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं, बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चले जाते। भारत को पावन बनाया, भारतवासी जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो तो आएंगे सुख धाम में और बाकी आत्माएं कहां जाएंगे, शांति धाम में चली जाती हैं। अभी है दुख धाम। इतनी सहज बात भी बुद्धि में नहीं बैठती। दुख दुख करते रहेंगे, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत समस्या, लेकिन दुख धाम में वो नहीं समझते। तो बाबा कहते इतनी सहज बात बुद्धि में भी नहीं बैठती है। जब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बगैर बाप से वर्षा मिल नहीं सकता। अब ये है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। लौकिक यज्ञ भी रचते हैं, जब तक ब्राह्मण नहीं है तब तक वो यज्ञ करेंगे ही नहीं। तो बाबा कहते हैं यज्ञ के लिए ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का ये अंतिम यज्ञ। अभी क्या है, मृत्यु लोक का अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में भी तो यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते ही नहीं। वहां कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं। तो बाबा कहते वहां पर तो कोई यज्ञ होता ही नहीं है, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। भक्तों की बुद्धि में ये बात बैठ न सके। कौन सी? कि अमर लोक में भगत यज्ञ नहीं होते हैं। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते। ज्ञान है ही नहीं, जा ही नहीं सकते है ना। परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई जाता नहीं है। बाबा ने समझाया है पहले नंबर को भी सतो रजो तमो में आना है, तो फिर दूसरे को भी तो सतो का पाठ बजाना है, फिर वापस कैसे जा सकते। पहले नंबर वाले भी सतो रजो तमो में आते हैं तो बाबा कहते दूसरे जो आते हैं पाठ बजाना है तो वो भी तो नहीं जा सकते है ना। तो दूसरे फिर सिर्फ सतों का पाठ बजाए वापिस कैसे जा सकते हैं, उनको भी तो तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती, ड्रामा के अंदर भी देखते हैं, फिल्म में भी देखते हैं, कोई एक्ट्रेस है जिनका शुरू से लेकर अंत तक पार्ट है, कई एक्ट्रेस है जिनका बाद में है, किसी का तो थोड़ा सा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक एक्टर की अब ताकत अपनी अपनी होती है। बड़े बड़े एक्ट्रेस कितने नामी ग्रामी होते हैं, सबसे मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? सबसे मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर कौन है, कौन होएगा? शिव बाबा। अभी तुम समझते हो कि गॉड फादर है मुख्य, पीछे कौन है? पहला डायरेक्टर है शिव बाबा, उसके पीछे कौन है बताओ? हैं? बाबा ने कहा जगत अम्बा जगत पिता, जगत के मालिक विश्व के मालिक बनते हैं ना, इनका पार्ट जरूर ऊंचा है, तो उनकी पे पगार भी ऊंची है। अब जो अच्छा काम करेगा, पार्ट अच्छा होगा, बड़ी पोस्ट पर होगा, तो उसकी पे भी तो उतनी होगी ना, पगार भी उतनी होगी। तो ब्रह्मा बाबा इतना बड़ा पार्ट किया है, भविष्य में जाके लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो कितनी बड़ी पे होगी, तो उनकी पे पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप, लौकिक में क्या होगा, गवर्नमेंट वाले जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, लेकिन यहाँ कौन देते हैं? पगार देते हैं बाप, जो सबसे ऊंच है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो मैं तुमको पगार तो इतनी जरूर देगा ना। बाबा कहते इतनी मदद किया, इतना कार्य किया विश्व परिवर्तन का, तो जरूर उसका रिटर्न तो देंगे ना, तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना इतना ऊंच पद प्राप्त कराता हूँ, तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए, गृहस्थ में भी रहना है, कर्म संन्यास है ना। बाबा कहते गृहस्थ में भी रहो लेकिन रहते हुए भी पाठ बजाना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते, गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। है कोई तकलीफ? घर में रहते हैं, आराम से रहते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा से सब कुछ मिल जाता है और खुशी मिलती है। दुनिया वाले तो गृहस्थ में सब कुछ होते हैं दुखी है, लेकिन बाबा के बच्चे कितने सुखी हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है, नॉलेज तो बड़ी सहज है, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का तुम्हें लायक बना दे। पावन दुनिया में तुम्हारी राजधानी है, तुम्हें बाबा कितनी बड़ी राजधानी देते हैं। इस ज्ञान के मुख्य दो सब्जेक्ट है, कौन सी है बताओ अभी? इस ज्ञान की मुख्य, वैसे बाबा कहते चार सब्जेक्ट हैं, आज बाबा ने दो सब्जेक्ट बोली, वो है अल्लाह और बे, बाप को याद करो और बादशाही को याद करो। इस ज्ञान के मुख्य दो सब्जेक्ट हैं अल्लाह और बे, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो, कहां? परम धाम में याद करो। बाबा क्यों कहते, कई बार बाबा कहते थे क्योंकि बाबा मुरली चलाने आते तो उस समय बाबा ब्रह्मा के तन में है, बाकी बाबा का निवास स्थान तो परम धाम है। बाबा क्यों कहते थे परम धाम में याद करो, तो अपना घर याद रहेगा, तब बुद्धि जाएगी कि अब हमको वापिस जाना है, नहीं तो सारा टाइम बाबा को याद करेंगे। वो तो करना ही है कि बाबा हमारे सामने है, हमसे बात कर रहे हैं, हम बाबा से मिल रहे हैं, लेकिन परम धाम में भी जरूर याद करना है क्योंकि वहां हमको जाना है। बाप कहते मुझे वहां याद करो, घर को भी याद करो, मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, ये बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। कौन सी बात? बाप को याद करने से घर में जाएंगे और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से राजा बनेंगे, ये बात बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है, सुख धाम में सुख शांति संपत्ति सब मिलता है, वहाँ एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति, घर घर में अशांति है, प्रकृति के द्वारा अशांति है, कभी कहाँ अशांति, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। तो बाबा की तभी देखो घर घर में अशांति है, स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, छोटी छोटी बात को लेके खड़े हो जाते हैं ना, अपना न्यू ब्लड होता है। तो बाबा कहते अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं, ये है तमो प्रधान दुनिया, सचिव है नई दुनिया, बाप संगम पर ही आया हुआ है, महाभारत लड़ाई भी संगम पर होती, बाबा ही संगम पर आके ज्ञान देते हैं और महाभारत लड़ाई भी बाबा कहते संगम पर ही होती है। अभी ये दुनिया बदलनी है, बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर ही आता हूँ, संगम पर ही सब कुछ है, सारे कल्प का आधार जो है वो संगम पर है। बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर ही आता हूँ, इसको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु ये पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं। मनाते ना, ये सावन मास है, ये पुरुषोत्तम मास है, भक्ति करते रहते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग है बाबा कहते वो कोई नहीं जानते हैं। फिर पुरुषोत्तम संगम युग का किसको पता नहीं है, संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इसमें भी नंबर वार तो होते ही हैं, हीरे जैसा, अब बताओ हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती। भक्ति में भी कहते हैं सोने की रावण की सोने की लंका थी, प्रजा उतना सुख था, लेकिन बाबा कहते वहां सतयुग के अंदर प्रजा कितनी भी होगी, पद के अनुसार होगा अलग अलग, लेकिन हो कि तो सुखी ना, तो सोने जैसे है, और राजाएं हैं हीरे जैसा, हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना, अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो, फिर उसमें ऊंच पद के लिए, ऊंच पद पाने के लिए बाबा बता रहे हैं, अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो, फिर उसमें ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ चलेगा। कितना अंतर, लौकिक पढ़ाई में क्या एक बार फेल हुआ तो दूसरी बार पेपर दे देते हैं, बाबा कहते इसमें क्या है कि जो करेंगे पूरे कल्प वही चलेगा। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा, समझा जाता है ये कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे। बाबा बहुत पुरुषार्थ कराते थे, समझाते थे, फिर कहीं कहीं नहीं करते थे तो बाबा कहते अब क्या करें, इनका ड्रामा में तकदीर में ऐसा है तो तदबीर भी कुछ नहीं कर सकती है, तो इसलिए बाबा कहते समझा जाता है कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, इससे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्प पांतर ये प्रजा में ही आएंगे, ये साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगी। बाबा तो जान लेते थे कि जैसा पुरुषार्थ होता था कि अगर नहीं करते हैं तो इनका प्रजा में होगा, ये दास दासी बनेगी, लेकिन बाबा कहते नहीं थे। शुरू शुरू में क्या हुआ कि कई सब बहुत सारे ट्रांस मैसेंजर थे यज्ञ की स्थापना में, तो क्या होता था कि वो ट्रांस मैसेंजर जाती थी तो वो देखती थी कई कई पुरुषार्थ वाले बाहरी पुरुषार्थ करते ना, यहाँ भी ऐसे ऐसे शो करते, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ऐसा किया ना, शो करने वाले पुरुषार्थ वाले वो ऐसे भी होते थे। तो उनको आकर के वो बोलती थी दासी बनेगी, तो उसको लगता था मैं इतना पुरुषार्थ करती हूँ और मैं दासी बनूंगी। फिर बाबा ने सब बंद करा दिया, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करे, चाहे अहम भाव से कर रहे हैं, चाहे बाहरी रूप से दिखाने के लिए कर रहे हैं, जो बाहरी रूप से दिखाते हैं ना वो लड़ते भी हैं। तो इसलिए बाबा ने क्या किया, उनको ऐसा होने लगा, फिर बाबा ने वो बंद करवा दिया था। लेकिन बाबा तो समझते थे ना कि अंदर से दिल से कौन पुरुषार्थ कर रहा है और बाहरी रूप से कौन कर रहा है, वो तो बाबा जानते, करने वाले भी जानते हैं। तो आज बाबा क्या बता रहे हैं, ये साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। नंबर वार तो होते हैं ना, पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा झट बता सकते हैं कि इस हालत में कल तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे, लेकिन बाबा बताते नहीं थे। कई बार बच्चे जाते बाबा को कहते थे, बाबा मैं कैसा पुरुषार्थ कर रहा हूँ बताओ। बाबा कहते तुम नहीं जानते क्या, मेरी ये ड्यूटी है क्या तुम्हारे को बताने की कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जो करोगे वो पाओगे। तो बाबा कहते हैं, बाबा झट बता सकते हैं अगर इस हालत में शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, अगर कोई शरीर छोड़ेंगे तो फिर पढ़ नहीं सकेंगे। बच्चा बन जाएगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा तो इतनी नॉलेज तो नहीं ले सकेंगे ना, हाँ थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा, शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो ना, शिव बाबा कहता रहता। कई कई छोटे छोटे बच्चे आते ना, वो क्या करते, बहुत सर्विसेबल गए हैं तो आते हैं तो अपने घर में आए तो पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चला जाता है और आ जाता है, ज्ञान में आ जाता है, और बच्चे बोलते रहते हैं बाबा बाबा, बाबा को देख करके बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो ज्ञान की बात को तो नहीं धारण कर सकता है ना। तो बाबा कहते हैं, जैसे छोटे बच्चे को तुम याद कराते हो शिव बाबा कहता रहता है, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। शिव बाबा मुख से बोला, पहले पुरुषार्थ का मिला, फिर बोलेगा तो भी उसका भाग्य बनता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों आदि का पता नहीं, जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर भी होता जाएगा, क्रोध होगा, मोह होगा, लोभ होगा, सब विकार आएंगे। अभी तुमको समझाया जाता है, इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती है ये तो सब कब्र दाखिल होने हैं, तमो प्रधान चीजें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें करने घोर को दे देते। पहले जमाने में होता था, कोई मरा उसके हर चीज जो है वो करनी घोर को दे देते थे। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है, धोबी भी है। बाबा बेहद का करनी घोर भी है, धोबी भी है। तुमसे क्या लेते हैं और तुम देते क्या हो, क्या दिया बाबा को, देंगे ककपन। कई तो इतने बच्चे हैं, देंगे जरा सा, सारा दिन वर्णन करते रहेंगे, मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, मैंने इतना दिया, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा मान होना चाहिए। जो दिया वो सब का सब कहाँ गया, पानी में बह गया। ऐसा नहीं होता है, देते हैं कणा दाना और डिमांड करते हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए बाबा कहते देते भी क्या हो। तो बाबा कहते तुमसे लेते क्या है, देते क्या हो, तुम जो कुछ थोड़ा बहुत धन भी देते हो वो तो खत्म हो जाना है। अभी देखो ना क्या हो रहा है, कहाँ पर किस देश में आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तूफान आ रहा है, अच्छे अच्छे घर भी जल गए हैं। क्योंकि लॉस एंजलिस का आप सुन रहे हैं ना कि इस बार इतनी बड़ी आग लग गई है वहां पर कि हवा का इतना तूफान है जिसके कारण आग जो है ना वो सारे शहर के अंदर आ रही है। तो गीता बहन लॉस एंजलिस वाली ने बताया, बाबा का सेंटर तो सेफ है लेकिन कई कई सनेही सहयोगी आत्माएं हैं, उनको थोड़ा گھروں کے اندر تھوڑا ہے لیکن ان کو سیف جگہ پر بھیج دیا گیا ہے. تو بابا کہتے اتنا دھن آدھی یہ سب کیا ہوگا, ختم ہو جائے گا نا. تو بابا کے بچے وہاں سیف ہیں, سینٹر بھی سیف ہے, لیکن کئی کئی ستھانوں پر نئی سہیوگی آتماؤں کے کہاں کہاں اثر آیا ہے, تو گورنمنٹ نے ان کو سیف جگہ پر بھیج دیا. تو وہ لوگ بھی ابھی سوچ رہے ہیں کہ جب یہ آگ کا بچے پورا ہوگا, ہوا کا جھونکا بند ہوگا, تب جا کر کے اپنے گھر جا کے دیکھیں گے کہ گھر میں کیا خراب ہوا ہے, کیا جلا ہے, کیا بچا ہے. تو اس پرکار سے دیکھو دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے. تو بابا کہتے دیتے ذرا سا ہو, ہے کیا اس مٹی میں مل جانا ہے. تو اس لیے بابا کہتے اس کا بھی نشہ نہیں ہونا چاہیے نا. تو بابا کہہ رہے ہیں, تو بابا کہتے ہیں تم سے لیتے کیا ہے اور دیتے کیا ہے, تم جو بھی تھوڑا دھن دیتے ہو وہ تو ختم ہونا ہی ہے, پھر بھی باپ کہتے ہیں یہ دھن رکھو. دیکھو بابا ہمیشہ کہتے تھے ایسا نہیں ہے کہ خالی ہاتھ ہو جاؤ, تھوڑا رکھو, اپنے لیے رکھو, پریوار کے لیے رکھو, سیوا بھی کرو. دادی ہمیشہ کہتی تھی پریوار کے لیے بھی رکھو, سیوا ارتھ بھی رکھو, اپنی طبیعت کے لیے بھی رکھو, اور بیلنس کر کے رکھنا ہے. تو بابا کہتے ہیں پھر بھی باپ کہتے یہ دھن رکھو اپنے پاس, صرف ان سے ممتو مٹا دو, حساب کتاب باپ کو دیتے رہو, پھر ڈائریکشنز ملتے رہیں گے. تمہارا یہ جو کک پن ہے وہ یونیورسٹی میں اور ہاسپٹل میں اور ہیلتھ اور ویلتھ کے لیے لگا دیتے. بابا کے پاس آتے تھے نا بچے, کہتے بابا اتنا ہے, تو بابا لیتے نہیں تھے, بابا کہتے تھے ابھی رکھو. پھر کیا دیکھتے تھے کہ نشٹ و موہا ہے, اس کا دل سچا ہے, تو پھر بابا ان کو کہتے تھے چلو سینٹر کھول دو, یا یہ کچھ جا کر کے ایسا کرو جو آ کر کے اسے لابھ لے. بابا خود نہیں لیتے تھے, کتنا بھی کچھ کہیں گے بابا کہتے سینٹر کھولو, سیوا میں لگاؤ. تو بابا آج یہی بتا رہے ہیں. تو بابا کہتے پھر تمہارا یہ جو کک پن ہے یونیورسٹی اور ہاسپٹل میں ہیلتھ ویلتھ کے لیے لگا دیتے ہیں. ہاسپٹل ہوتی ہے بیمار کے لیے اور یونیورسٹی ہوتی ہے پڑھانے کے لیے. یہ تو کالج اور ہاسپٹل دونوں اکٹھی ہیں. بابا کہتے یہ کیا ہے, یونیورسٹی بھی ہے, کالج بھی ہے, ہاسپٹل بھی ہے. ان کے لیے صرف تین پیر پرتھوی کے چاہیے, بس جن کے پاس اور کچھ نہیں ہے وہ تین پیر زمین کے دے دیں. کئی بار کوئی کہتے تھے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے بابا, ہمارے پاس یہ زمین کا ٹکڑا پڑا ہے. تو بابا کہتے تھے دے دو, اس میں یونیورسٹی کھول دیں گے, کچھ دل ہوگا تو دے دے گا, نہیں ہوگا تو کہے گا بس میں کیا کروں. تو بابا کہتے تھے تم دو گے تو بھاگی بنے گا. تو بابا کہتے ہیں بس جن کے پاس اور کچھ نہیں ہے وہ صرف تین پیر زمین کے دے دے, اس میں کلاس لگا دے. تین پیر پرتھوی کے وہ تو صرف بیٹھنے کی جگہ ہوئی نا. ابھی آج کل کیا چلتا ہے, لوگ کیا کہتے ہمارے پاس فلانی زمین پڑی ہے, سینٹرز کے بہنوں کو کہیں گے لے لو. پھر اتنی پرابلم ہوتی ہے اس زمین کے اندر, جتنے کمپلیکیشن ہوتے ہیں نا, کئی اتنے ہوشیار ہیں جس زمین کے اندر کمپلیکیشن ہے کہیں گے یگے کو دے دو یہ آپ سنبھالتے رہیں گے, اس کا جو لڑائی جھگڑا وہ آپ سنبھالتے رہیں گے. لیکن بابا بھی جانتے ہیں, بچے بھی جانتے ہیں, کبھی بھی کمپلیکیشن والی زمین کے لیے کسی کو ہاں نہیں کرنا ہے. پھر کئی کیا کرتے ہیں زمین دے دی, ارے زمین تو دے دی, اس کے اوپر بنانے کا کتنا خرچہ ہوتا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں پڑے گا, کہے گا میں نے بنوایا ہے. لیکن تم نے زمین دی اس پہ کتنا, زمین ہوگی پہلے زمانے کی سستی اور اس پہ خرچہ کتنا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, دل سے دیا تو ٹھیک ہے. لیکن کمپلیکیشن والی جو ہوتی ہے جس میں بہت سے جھنجٹ ہوتے ہیں, اس کے لیے کو سوچتے ہیں ان کو دے دو. تو بابا بھی سمجھاتے ہیں بچوں کو کبھی بھی ان باتوں میں, زمین کے لالچ میں, ان باتوں میں, کمپلیکیشن والی زمین کی باتوں کا بہت دھیان رکھنا ہے. تو یہ بھی بابا بچوں کو بتاتے ہیں. تو بابا کہتے ہیں یہ تو صرف بیٹھنے کی جگہ ہوئی نا, آسن بھی تو تین پیر کا ہوتا ہے. تین پیر پرتھوی پر کوئی بھی آئے گا اچھی ریتی سمجھ کر جائے گا, کوئی آیا آسن پر بٹھایا اور باپ کا پریچے دیا. بیجز بھی تو بہت بنوا رہے ہیں, बाबा के टाइम पर बाबा ने बहुत बैजेस बनवाए थे, बाबा कहते थे ये बैज के द्वारा भी सेवा हो सकते, बैजेस भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए, ये है बहुत सिंपल। बाबा के टाइम पर बहुत सिंपल बैज था, चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है, इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होती है। चित्र भी लेख के देखते ना बहुत खुश होते हैं, बैज को देखकर तो इतने खुश होते हैं, बाहर वाले देखते हैं कहते हमको ये बैज दे दो, बस यही दे दो, और उनको पता नहीं कि इसमें क्या राज समाया है। तो बाबा कहती हैं इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी, दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्यों को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, अपनी अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएं। अपने को आत्म समझ और बाप से पूरा लव रखना, कितना सही तरीका है, अपने को आत्म समझ और बाप से पूरा लव रखना है। देही अभिमान में ना आओ, हाँ बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो। अंतर, बच्चों को संभालना है, उनको पालना है, परिवार को चलाना है, उनको प्यार से चलाना है, लेकिन मोह नहीं रखना है, देह भान में नहीं आना है। हाँ बाहर का प्यार बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो, उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मित्र संबंधी बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे कि कहाँ पर हो आप बताओ, बाप को याद में बुद्धि लटकी रहे तो बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे जैसे कि याद की फांसी में लटके हुए है कि नहीं। पक्का अभी जनवरी मास चल रहा है ना, तो उसमें तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा को याद करने का। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो, आत्मा को अपने बाप परमात्मा को याद करना है, बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी तो ऊपर है ना, बाबा भी परम धाम में रहते हैं, बाप का घर भी ऊपर है और हमारा घर भी तो ऊपर है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये है स्थूल वतन। अब फिर वापिस जाना है, अब तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई। यात्रा पर जाते हैं ना, लास्ट में होते पूरा होने कहते बस अभी तो पूरा ही होने वाला, मुसाफरी पूरी हुई है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई, तुम अब मुसाफरी से लौट रहे हो अपने घर। तो अपना घर कितना प्यारा लगता है ना, वह है बेहद का घर। वापिस अपने घर जाना है, मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं तो घर जा नहीं सकते। बार बार पूजा करते हैं, गाते रहते हैं कि वापिस मुक्ति धाम जाए, लेकिन ज्ञान है ही नहीं, तो बाबा कहते जा ही नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का ही रास्ता बताते हैं, सुख धाम को तो जानते ही नहीं। सुख धाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते। अपना घर है निर्वाण धाम, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी भी तो पूजा होती है ना, अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे, बिंदी इतनी छोटी क्या करें, कर ही नहीं सकते ना। जब पूजा करते हैं तो शालिग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूजते, जब ये यज्ञ रचते हैं तो क्या करते हैं, एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, उसके साथ कितने लाखों की संख्या में शालिग्राम बनाते हैं, उन शालिग्राम के ऊपर भी कुछ ना कुछ करते ही रहते ना। तो बाबा कहते जो शालिग्राम बनाए एक एक की आत्मा को पूजते हैं। तो बाबा कहते हैं बिंदी की पूजा कैसे करें, इसलिए बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को भी तो अपना शरीर नहीं है, ये बातें अभी तुम जानते हो, चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े। आप चित्र में भी शिव बाबा का बनाएंगे, बिंदी थोड़ी बनाएंगे, बिंदी है बीच में, लेकिन बाबा की किरणें, कितना किरणों वाला चित्र भी कितना सुंदर है, बाबा ने बनवाया था ना। तो बाबा कहते हैं चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े, बिंदी से कैसे समझेंगे, यूं बनाना तो चाहिए स्टार, लेकिन बाबा की तो समझेंगे नहीं, इसलिए बड़ा बनवाते। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं, तैयार मिलते हैं सफेद तिलक। अब देखो कई प्रकार के रेडीमेड तिलक मिलते हैं, सफेद भी होगा, रेड भी होगा, और उस सफेद के ऊपर चमक भी होगी, कई तरह आजकल तो इतने वैरायटी तिलक मिलते रहते हैं, माताएं तो लगाती रहती हैं। बाबा कहते हैं ये क्या है, आत्मा की निशानी है, आत्मा भी सफेद होती है ना, स्टार मिसल, ये भी एक निशानी है। ब्रिकुटे के बीच में आत्मा रहती है, बाकी इसका अर्थ किसको पता नहीं, वो यहाँ क्यों तिलक लगाते हैं किसी को दुनिया में पता नहीं। बाबा कहते हैं आत्मा का निवास स्थान ये है, इसलिए यहाँ पर ही लगाते हैं, बाकी इसका अर्थ किसको पता नहीं। ये बाप समझाते हैं कि इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है, इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, ये भी वंडर है, आत्मा में इनका पार्ट भरा हुआ, बॉम्ब आदि बनाना ये सब करना, बाबा कहते आत्मा में भी इनका पार्ट भरा हुआ है। ये बड़ी गुहर बात है, इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम करती है, आत्मा अविनाशी है, उनका पार्ट कभी भी विनाश नहीं होता है, न एक्ट बदलती है, जो एक्ट कलप पहले किया वही चलेगी, ना बदलेगी, ना पार्ट जो खत्म होगा, ना एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है, पुराना तो होता नहीं, सतयुग में झाड़ जो है छोटा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है, कौन सा हो रहा है, बाबा कहते हैं कलम, झाड़ का कलम ना, लेकिन बाबा कह रहे मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है। तुम पति थे, अब फिर पावन बन रहे हो, छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट है, कुदरत ये है, अविनाशी पार्ट चलता ही रहता है, वह कभी बंद नहीं होता है, अविनाशी चीज है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, ये वंडर है ना। बाप कहते हैं, बाप समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें मेहनत है, जास्ती पार्ट तुम्हारा है। अब शिव बाबा क्या बता रहे, देखो मेरा तो थोड़ा पार्ट है, सबसे जास्ती पार्ट क्या है, तुम बच्चों का है, बाप का इतना पार्ट नहीं है जितना तुम्हारा है। बाबा तो संगम युग पर आते, द्वापर से शुरू होता है थोड़ा पार्ट, लेकिन संगम युग पर आते, और तुम ब्राह्मण बच्चे पूरे कल्प के अंदर सेवा चक्कर लगाते हो। बाबा कहते बाबा का इतना पार्ट नहीं है जितना तुम्हारा। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो, तो फिर देखो मैं फिर विश्राम में बैठ जाता, कितना अच्छा पार्ट है, संगम युग के अंदर पार्ट बजाया, आधा कल्प विश्राम, फिर आधा कल्प के बाद बाप का कार्य शुरू होता है। बाप कहते तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो, तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ, हमारा कोई पार्ट ही नहीं है, मैं क्या करूँ, सतयुग के अंदर न याद करेंगे न पार्ट है, इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना, बाबा कहते मैं इतनी सर्विस करता हूँ जो आधा कल्प कोई पार्ट नहीं है। ये नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे स्वयं जरा भी कोई नहीं जानते हैं, बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। कई बार ढीले हो जाते हैं ना खान पान में, फिर कुछ कुछ खा लेते हैं तो उसका भी असर होता है, पुरुषार्थ पर असर होता है, योग पर भी असर होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं खान पान का भी ध्यान रखना है। खान पान आदि का फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है, इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज है, बाप को याद करना है और वर्षा पाना है, इसलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास चित्र भी रख लो। कभी कभी बाबा कहते ना अपने पॉकेट में चित्र रख लो। बाबा खुद भी पहले भक्ति में क्या करते थे, नारायण का चित्र अपने पॉकेट में रखते थे, फिर बाबा कहते थे ज्ञान में भी कहा चित्र पॉकेट में रख लो, फिर नहीं तो घरों में चित्र लगा लो, देख देख करके उस पर विचार सारा मंथन करो। इसलिए बाबा ने कहा तुम अपने पास चित्र रख दो, योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। बाबा ने कितना एक बार शुरू शुरू में क्या किया था, बहने तपस्या कर रही है, एक तरफ तपस्या रूप और दूसरी तरफ उनका सजा सजाया रूप कि हम भविष्य में ऐसा बनने वाले हैं, तो उस स्वरूप की स्मृति रहेगी। तो बाबा कहते योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय होंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युगी, तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्यों को ये बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी, जितना बच्चे भी समझेंगे ज्यादा खुशी बढ़ेगी, दूसरे लोग भी समझेंगे तो उनकी बुद्धि में भी बैठेगा। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते, ये नशा रहते ना, बाबा कदम कदम पर कितनी मदद करते हैं, तो ये भी तो नशा होना चाहिए ना। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं, कलप कलप हमारी चढ़ती कला होती है, यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बाबा की तरह से नहीं कि छोड़ना है, यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ सब कुछ करना पड़ता है, बुद्धि में रहे कि हम शिव बाबा के भंडारे से खाते। कईयों को बाबा कहते थे घर में रहना है, परिवार को संभालना है और कैसे ट्रस्टी होके रहना, वहाँ घर में रहते हुए भी ये बुद्धि में रहे कि हम शिव बाबा के भंडारे से खाते, ये शिव बाबा का दिया हुआ है, बाबा ने हमको निमित्त बनाया चलाने के लिए, तो बुद्धि में रहेगा तो फिर बाबा सदा याद रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे, फिर ये पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं है, कई के तो समझदार बच्चे होते थे, बाबा को देने के लिए कहते थे, बाबा हमेशा कहते थे रखो अपने पास, बाबा समझ जाते थे इसका क्या दिल है। तो बाबा कई बच्चे समझ जाते बाबा क्यों नहीं ले रहे हमसे, तो बाबा कहते देखो बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं है, वह तो दाता है। बाबा कहते मैं क्यों लूंगा, मैं तो देने वाला हूँ, वह तो दाता है। बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो, ये सबसे बड़ा देना है। बाबा की श्रीमत पर चलना मीन्स जो कुछ भी है हम संकल्प बाबा को देते हैं। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे काम किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। ये तो शराब आदि की बात है, कई बार क्या करते किसको पैसा दे देते हैं, कहेंगे अच्छा इतने टाइम में ना इतना आपको मिल जाएगा, डबल मिल जाएगा। वो इतना होशियार होता है पैसा चारों तरफ से इकट्ठा करके वो भाग जाता है, डबल तो क्या कख भी नहीं मिलेगा उसे। तो इसलिए बाबा कहते कई बार ऐसे बहुत आते हैं, कई बार फिर पहले तो बताते नहीं है, बाद में जब देने के बाद चला जाता, फलाने को मैंने दिया था, फलाने ने मेरा दिया नहीं, अरे पहले दिया ही क्यों। तो ऐसे बहुत केसेस होते हैं, तो बाबा हमेशा सावधान करते हैं, ये आप ब्राह्मणों की जो कमाई है, ये कमाई सच्ची कमाई, इसको संभाल के रखो। लालच में आकर के किसी को भी डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, उन बातों में आकर के किसी को कभी भी कुछ नहीं देना है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, हमारी श्रीमत पर चलो, तुम्हें पैसे का दान किसे करना है इस बात पर पूरा ध्यान देना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे काम किया, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं। कितना फर्क है पाप आत्मा और पाप आत्मा से लेन देन कर पाप आत्मा बन गए। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना, पाप आत्मा से लेन देन किया तो जो एक तरफ तो विकर्मों का बोझ उतार रहे हैं, फिर धीरे धीरे फिर चढ़ने लग जाता है। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। बाप कहते हैं, कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। बाप भी सैक्रीन बनकर आते, बाबा इतना प्यार करते हैं, बाबा हमेशा कहते मीठे मीठे बच्चे, सदा हमेशा कभी नहीं कहेंगे कड़वे बच्चे, कभी बाबा ने कहा आतंक करने वाले बच्चे, कभी नहीं कहा। बाबा क्यों इतना प्यार करते हैं, तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, बाप भी सैक्रीन बनकर आते हैं, पुराना कखपन लेते हैं, देखो कितना ब्याज देते हैं, क्या देते हैं, विश्व के बादशाह देते हैं, पुराना कखपन लेते हैं, देखो कितना ब्याज देते हैं, बड़ा भारी ब्याज मिलता है, कितना भोला है। शिव बाबा को कहते हैं भोला नाथ है, कितना भोला भी है, लेकिन साथ साथ एक्यूरेट भी है, हिसाब का हिसाब ही मिलता है। तो बाबा कहते कितना भोला है, दो मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अब मुसाफरी पूरी हुई, वापिस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। अब मुसाफरी पूरी हुई, वापिस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, बुद्धि योग बाप से बाप की याद में ऊपर लटकाना है। दूसरा, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, काम काज करते बाप की याद में रहना है। वरदान, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां भी आदि रतन है। ब्रह्मा आदि देव और ब्रह्मा कुमार और कुमारियां आदि रतन है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वर रतन, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर ही हर कार्य करो तो समर्थ भाव का वरदान मिल ही जाएगा, कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। अभी है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो, अपनी सेवा में साकाश दे बुद्धि, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं उन विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। तो साकाश देने के लिए कौन सा स्वमान रहे आज बता रहे हैं। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा के लिए स्वमान क्या रहे? स्वमान है मैं विघ्न विनाशक हूँ। योग अभ्यास है मैं आत्मा सर्व के विघ्नों को समाप्त करने वाला शिव पुत्र गणेश हूँ। हमारी विघ्न विनाशक स्थिति और श्रेष्ठ संकल्प से पावरफुल मनसा साकाश से विघ्न समाप्त हो रहे हैं, सर्व का कल्याण हो रहा है। धारणा क्या है? हर बात में कल्याण समझकर सदा निश्चिंत रहना। छोटी छोटी बात में उलझ जाते ना तो बाबा कहते हर बात में कल्याण समझकर सदा निश्चिंत रहना। चिंतन, विघ्न विनाशक सफलता स्वरूप बनने की विधि क्या है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को मालूम है कि बाबा की सीजन के लिए शांति वन में भी बहुत से भाई बहने पहुंच रहे हैं और ज्ञान सभा में डबल विदेशी भाई बहनों का भी बड़ा ग्रुप पहुंच रहा है, पहुंच भी चुके हैं। और हमारे बीच आज भावना बहन, आपको मधुबन वाले तो सब जानते हैं, नए नए नहीं जानते, खड़ी तो हो जाओ, आ जाओ ऊपर मंच पर आओ, योग भी कराना। भावना बहन न्यूजीलैंड फिजी और उस साइड के जितने सेंटर्स हैं उनके विशेष डायरेक्टर हैं और बाबा की पुरानी बच्ची। आप भावना बहन को जो जानते हाथ खड़ा करें, थोड़े जो मधुबन वाले वो सब जानते हैं। मधुबन की सब पालना है, सब ज्ञान भी सब वहाँ लिया भले अहमदाबाद से, साथ में भाई भी आए ना, विनय भाई भी आए ना, आओ ना आप भी आओ, दोनों आओ, आओ। और भावना बहन एक महीने के लिए ज्ञान सभा में खास आई है, डबल विदेशी भाई, आओ विनय भाई आप भी आओ। इतना लाडला परिवार, इतने परिवार के इतनी महिमा है, हम आपको क्या बताएं। हरीश भाई और सुशीला बहन, उनके लौकिक परिवार, पूरा परिवार इकट्ठे ज्ञान में चला। मुझे याद आता है 1974 में हरीश भाई जैसे ही बाबा का ज्ञान सुना, इतने स्नेह में खोए हुए थे, और पूरा का पूरा परिवार उसी समय से ज्ञान में आ गया। और 74 से पहले ज्ञान में आए, लेकिन 74 में हम मधुबन में पहली बार आए थे तो उस समय हम उनसे मिले थे। और पूरा ही परिवार जैसे ज्ञान में चला, ये सब छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन ऐसे पावरफुल बच्चे, इतने अच्छे बच्चे, और पूरा ही परिवार ज्ञान में। और भावना बहन तो न्यूजीलैंड में रहती है और नेहा बहन अहमदाबाद सुख शांति के और संबंधी सभी सेवा केंद्रों का वो देख रेख करती है। विनय भाई तो अभी लौकिक सेवा से बाबा ने हल्का कर दिया, अभी अलौकिक सेवा में भी अपना योगदान देते हैं। और शुरू से ही बाबा के कई कार्यों के अंदर, यज्ञ के कई कार्यों में आपका सहयोग रहता है, इसलिए करतल ध्वनि से हम भावना बहन का और विनय भाई का बहुत बहुत स्वागत करते, क्योंकि भावना बहन विदेश की बहनें आती हैं तो वहां रहती हैं, ज्ञान श्रम में तो वहां रहती हैं, तो यहाँ आती हैं, बाबा से मिलने आते हैं, लेकिन यहाँ उनका थोड़ा कम होता है रहने, तो हमारे बीच में है, कुछ बोलेंगे आप सुनेंगे, माइक देना।
ओम शांति। जैसे शशि दीदी ने बताया, विशेष मेरा बेस है न्यूजीलैंड और फिजी और उसके आजू बाजू बहुत सारे देश है, तो वो मैं संभालने की सेवा करती हूँ। और पिछले अबाउट 43 इयर्स हो गए विदेश की सेवाएं करते करते, तो बाबा ने एक बहुत अच्छा चांस दिया बहुत कुछ सिखाने का भी, जैसे कि इस जीवन में बाबा ने ये भी एक अनुभव कराया। तो अभी मधुबन में मैं विशेष आई हुई हूँ, तो जनवरी पूरा महीना वी डबल फॉरेनर्स की सीजन है, तो खास मैं ज्ञान सरोवर में रुकी हूँ, लेकिन मधुबन जो पांडव भवन शुरू से ही जिसके साथ हमारा कनेक्शन रहा है, तो आज दिल थी तो मैंने कहा चलो आज मुरली पांडव भवन में सुनते हैं, तो इसीलिए विशेष यहाँ आना हुआ। और हमारे डबल फॉरेनर्स भाई बहने भी है, कुछ भारतवासी भी है, तो इस बहाने सबसे मिलने का भी एक चांस मिलता है। ओम शांति।
वहाँ पर बहुत सेवाएं हैं, बहुत सेवाएं हैं, और कहाँ कहाँ चक्कर भी लगाते रहते हैं। विनय भाई कुछ बोलेंगे? ठीक है, अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। एंड नाउ वी सिट इन बाबा'स रिमेम्बरेंस। आफ्टर दैट ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर रिक्वेस्टेड टू स्टे बैक। टुडेज प्रोग्राम विल बी अनाउंस। दोज हु अराइव्ड यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, रेज योर हैंड। ओके, योग के बाद डबल विदेशी भाई बहनों को आज का सारे दिन का प्रोग्राम बताएंगे। ओम शांति।